You are listening to Radio Sai Global Harmony. Please visit our website radiosai.org to listen to our free internet streaming service. On this website, you can access audio streams. The first three are Asia Stream, Afri Stream, and Ameri Stream, which offer you programs in the languages common to these geographic regions. The other two streams are Bhajan Stream and Discourse Stream. Click on the Bhajan Stream to listen to a Sai Bhajan at any time of the day. Similarly, to listen to the divine voice of Bhagavan Sri Satya Sai Baba 24 hours a day, 7 days a week, please log on to the Discourse Stream. Just log on to radiosai.org and experience the divine love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. For any inquiries, please email us at listener@radiosai.org.
Sairam, dear listeners, greetings and a warm welcome to today's Thursday Life. This is the segment Service Love in Action, and I'm Raghu from Team Radio Sai, and as always, today I'm accompanied by Brother Sunil, who will be helping me in playing the audio files from the console. Dear listeners, today is 13th of June and the weather right now in the ashram is quite pleasant, and it has been pleasant and cool from the past 1 week or so. So in today's segment, Service Love in Action, I'll be discussing with you about those who have the scarf on the neck and sairam on the lips as their hallmark. Well, every fortnight they come from states all over the country to render a period of relentless service in different places in Prashant Nilayam campus. Well, dear listeners, they are everywhere in the ashram, right from the Sai Kulant Hall to the canteen, then shopping complex in the entrance gates, that is the Ganesh Gate, Gopuram Gate, and also they work in Swami Super Speciality Hospitals, General Hospital, and in many more places like the Sri Satya Sai Indoor Stadium, Chaitanya Jyoti, Hillview Stadium, and many more. In fact, it won't be an exaggeration if I say that without them, the entire Prashant Nilayam will come to a standstill. So, dear listeners, they are the Sevadal force, the people who make the difference. Every fortnight they come, and this fortnight, that is from June 1st to June 15th, they have come from the Indian state of Uttar Pradesh and Uttarakhand. And last week, if you are tuned to this segment, Service Love in Action, I had a conversation with the state president of the Sri Satya Sai Seva organization of the state Uttar Pradesh, Mr. Raju Chopra, and he gave a detailed overview of the different service activities that is happening in the state of Uttar Pradesh. So dear listeners, this fortnight, the Sevadas who have come are from the state of Uttar Pradesh, and they are 1300 in number. And you know what? Out of the 1300 Sevadas who have come here, 400 Sevadas are coming here for the first time, and they are doing the Prashanti Seva for the first time. So today in this segment of Service Love in Action, I'll be playing for you a few audio clips that these Sevadas have spoken, and they have shared with us their experiences of doing Seva here in the ashram, and that too for the first time. So that's in a while from now. Well, to begin with, let me play for you a beautiful song, a Telugu song from a Sai Blossom product, Sai Nadajari. They are sung by Malladi Brothers. And let's listen to it.
Sai Nama Smaranam, Sai Rupa Dhyanam, Sada Maku Iga Padala Nosaku Sadhanam. Sai Nama Smaranam, Sai Rupa Dhyanam, Sada Maku Iga Padala Nosaku Sadhanam.
Salam, dear listeners, welcome back. Well, there was some technical glitch, we had lost connection. We apologize for it. So, dear listeners, this is the segment Service Love in Action, bringing you the accounts of Swami's love and our love for Swami, translating into service to humanity. So, as I said in the beginning, in today's segment, I'll be playing for you audio clips yesterday we had conversation with the Sevadal members who have come here for rendering the Prashanti Seva for the fortnight from June 1st to June 15th. And yesterday, Radio Sai's Karuna Munshi, who hosted the previous segment, that is Morning Glory, spoke to a few of the members of the Sevadal, and they shared with us their experiences of their duties here. And 1300 Sevadals have come from the state of Uttar Pradesh for this fortnight, and 400 of them are new Sevadals, that is, they are coming here for the first time for their Prashanti Seva. So let's listen to few sound bites of that conversation. Well, this conversation is in the Indian language, Hindi, and after the sound bite, I will summarize the gist of the conversation, what they told in Hindi. So first, let's listen to Dhananjay Sharma, who is the Sevadal coordinator.
Om Shri Sai Ram.
Om Shri Sai Ram.
Shri Dhananjay Sharma ji, Meerut Uttar Pradesh se hamare saath judne ke liye bahut bahut dhanyawad.
Swagat. Sai Ram.
Sai Ram, aap hame bataiye, aapke group mein kitne log Puttaparthi Prashanti Seva ke liye aaye hue hain is waqt?
दीदी, हमारे साथ इस साल जून प्रशांति सेवा में लगभग 1300 मेल एंड फीमेल आए हैं.
1300 लोग टोटल.
और उसमें से जो हमारे साथ आए हैं, जो लगभग 400 सेवा दल ऐसा है जो ड्यू कमर है, वेरी फर्स्ट टाइम प्रशांति सेवा में आया है. और उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, हार्डली 1 साल से वो लोग हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं. उन लोगों को भगवान बाबा ने कहां से इंस्पायर किया, कैसे मोटिवेट हुए, जब आप उनसे बात करेंगे तो वो अपने एक्सपीरियंसेस खुद बताएंगे.
मैं आपको वही पूछने वाली थी, अभी इतने नए हैं और ऐसे प्रेरणा उनको कैसे मिली कि इतना कठिन काम, ये तो बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है.
ये तो मैं सोचता हूं केवल भगवान बाबा ने उनको इंस्पायर किया है. भगवान बाबा ने उनको शायद स्पेशल इसी काम के लिए भेजा था.
अच्छा.
जो उनका अब समय आया तो इस समय पे भगवान बाबा ने उनको जगाया और प्रशांति आने के लिए प्रेरित किया.
आपके प्रांत के सेवादल कोऑर्डिनेटर हैं
जी.
आपने 1300 लोगों को यहां लाने के लिए क्या तैयारी की?
ऐसा मेरे को तभी थोड़े दिन पहले ही इस जिम्मेदारी को दिया गया था. पिछले वैसे 2 साल से मैं और मेरा छोटा भाई सचिन नेब, जो हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट यूथ कोऑर्डिनेटर, हम लोगों को अभी थोड़े दिन पहले ही इस जिम्मेदारी दी गई. तो हम जितना कर सकते थे अपने उसमें, लोगों से टेलीफोनिक टॉक करके, जगह जगह जा करके लोगों से मिले. कुछ लोगों ने जिम्मेदारी ली कि आप चिंता न करें, हम ज्यादा से ज्यादा सेवा दल लेकर के आएंगे. सेवा दल और भी बढ़ सकता था, लेकिन इस बारी थोड़ी सी दिक्कत ये रही कि जो यूथ था हमारा
जी,
उसके एग्जाम बीच में आ गए. यूनिवर्सिटीज के एग्जाम थोड़े से लेट हो गए थे, तो उनके एग्जाम जून में खत्म हुए, इस वजह से थोड़ा सा वो रह गया. लेकिन नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा हो.
बहुत ही अच्छा. बहुत
लोगों में जो आए हैं उसमें हमारा पार्टिसिपेशन बहुत कम है, उनके खुद के इंस्पायर हुए हैं, वो खुद के उससे ज्यादा आए हैं.
ये तो सुन के बहुत अच्छा लगा. कुछ और बताना चाहेंगे आप इस विषय में?
मैं तो केवल ये जानता हूं कि जब प्रशांति सेवा में मैं 2006 से आ रहा हूं
जी,
तो पहली बार मैं 99 में आया था। जैसे फर्स्ट टाइम की बहुत सुख होती है कि अच्छा से नहीं लगा था, तो मेरे को भी हुआ कि ठीक है भगवान के दर्शन के लिए आओ सेवा में, पता नहीं क्या था उस टाइम में। लेकिन 2006 में फिर जैसे भगवान बाबा जब चाहते हैं जब बुलाते हैं, तो 2006 में जब मैं आया तो उसके बाद आने पे लगा कि बार बार सेवा में आना चाहिए। तो मैंने जो पाया अभी तक, मैंने पाया कि भगवान बाबा सेवा के रूप में साधना सिखाना चाहते हैं। ये मेडिटेशन है, एक साधना, एक ट्रेनिंग कैंप है, एक प्रशांति में आकर के एक वर्कशॉप है जो आपके आत्ममंथन करने के लिए आपको प्रेरित करता है, आपके अंदर की बुराइयों को निकाल करके एक अच्छी चीज ग्रहण करने के लिए यहां पर प्रेरणा मिलती है। उसी प्रेरणा को मैं भी ग्रहण करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे में एक ईगो है मैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। कब भगवान बाबा उसमें कामयाबी देंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक मैं प्रयासरत हूं कि मैं सेवा में आता रहूं और जो मेरी कमियां हैं उनको मैं दूर करता रहूं।
बहुत ही अच्छा बताया आपने। आप मेरठ में क्या करते हैं?
मैं एडवोकेट हूं, प्रोफेशनली मैं एडवोकेट हूं और 90 से मैं इस प्रोफेशन में हूं।
और यहां आप 2006 से आते रहे हैं सेवा?
रेगुलर आता हूं जून सेवा में, भगवान बाबा की इच्छा है, मेरा सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं जीऊं, जब तक मेरे प्राण रहे, मैं प्रशांति सेवा के लिए निरंतर आता रहूं।
बहुत ही अच्छा लगा आपसे जुड़ के, बहुत बहुत धन्यवाद।
साई राम।
सराम डियर लिसनर्स, सो दैट वाज धनंजय शर्मा, द सेवादल कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेवादल्स हु हैव कम हियर फॉर दिस फोर्टनाइट फॉर एंटरिंग प्रशांति सेवा। दे आर फ्रॉम द इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश। एंड इन द कॉन्वर्सेशन when asked that what has he learned after doing the service activities here, he said that the Prashanti Seva, which he has been coming from many years, has transformed his life. He said it has helped him in reducing his ego, and he further said that coming to Prashanti Nilayam is like coming to a workshop where he gets himself repaired and goes back recharged. In fact, dear listeners, Swami has told that when we serve others, we are actually serving ourselves. Seva, that is selfless service, helps us in many ways. The first benefit is that in the process the ego is diluted. At least for those few moments when we are serving others, we forget ourselves. Well, the second benefit that Bhagwan points out is that service leads to transformation. The service develops in us more forbearance, reduces our anger and makes us more humble. And the third benefit is that when we serve others, we become sensitive to other people's concerns, needs and pain, and it softens our heart. So yesterday Radio Sai's Karuna Munshi had spoken to many other sevadas, and I'll be playing for you few more clips from that. So let's listen to Manoj Kumar Sharma, who again came from Uttar Pradesh for Prashanti Seva. And he has been coming here for the first time, and this is his first experience being in Prashanti Seva. So let's listen to Manoj Kumar Sharma.
Sai Ram Mishra ji.
Sai Ram.
आप हमारे listeners के लिए अपनी introduction दे दीजिए please.
मैं मनोज कुमार मिश्रा, प्रतापगढ़ यूपी से आया हूँ.
आप वहाँ क्या करते
हैं? मैं बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ और ABSA के रूप में कार्यरत हूँ.
बहुत ही अच्छा लगा. पहली दफा ये आपका पहला विजिट है पुट्टपर्ती में, पहला अवसर है सेवा करने का.
जी जी.
कैसा रहा आपका अनुभव?
बहुत अच्छा लगा. इस आश्रम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा, पहली बार ऐसे आश्रम में मुझे अनुभव हुआ है कि जहां पर आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ साथ जीवन को कैसे चलाया जाए. और इस कैंपस में तो आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वास्तविक रूप से यहाँ पर परमात्मा का वास है.
वो कैसे?
यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैं प्रशांति स्टेशन से उतरा हूँ, जैसे ही कैंपस स्टार्ट हुआ है,
हाँ.
वहां से जैसे मेरा एंट्रेंस हुआ है, एक यहाँ का एटमॉस्फियर जो कुछ था वो ऐसे मुझे महसूस होने लगा कि मेरे ऊपर जो भी टेंशन है या तनाव है या जो मैं दिन भर की भाग दौड़ में मैं व्यस्त रहता था, उन सब से मैं अपने आप को एकदम फ्री महसूस करने लगा. और ये लगा कि बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं मैं अपने आप को.
ये तो सभी का अनुभव रहता है. और यहां आके कोई परेशानी याद ही नहीं आती, कौन सी बात है जो दिमाग में खल रही थी, सब भूल जाता है इंसान, इतनी शांति मिलती है। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपने यहाँ देखा होगा हमारे कितने स्कूल्स और कॉलेजेस हैं।
बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर जो है प्राइमरी स्कूल भी हैं, यूनिवर्सिटीज हैं
जी,
और ये लगा कि बाबा के बहुत अच्छे अच्छे शैक्षणिक संस्था, विद्या वाहिनी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा जो है बेसिक शिक्षा के लिए या हायर एजुकेशन के लिए जो है बाबा का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा जी।
यहाँ पे सेवादल पे आपकी क्या ड्यूटी लगी है?
मैं गणेश गेट पर कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, और वहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी मैं सिक्योरिटी के रूप में लगाया गया हूँ। मैं उनकी तलाशी लेता हूँ कि कोई ऐसे इलीगल चीजें लेकर ना एंट्रेंस हो जाए
जी,
तो उसी में मैं सेवा कर रहा हूँ।
ये तो आपका पहला तजुर्बा है, अनुभव है यहाँ आने का, क्या आपको लगता है आप आगे दोबारा आएंगे?
श्योर, निश्चित तौर पे आएंगे।
क्यों?
क्योंकि जो शांति और ये या ये कहें कि जिस चीज की मुझे तलाश थी शायद वो मिल गया है मुझे। इसके पहले भी मैं कई मठों में गया हूँ, तथा कथित मठ हैं जो अपने को आदि शंकराचार्य या और कुछ नाम से विभूषित कर चुके हैं
जी।
जो शांति या जो आध्यात्मिक गतिविधियां मुझे यहां देखने को मिली हैं वहां कहीं भी नहीं देखने को मिली हैं। और यहां तो एक ऐसा संस्थान मुझे दिखाई दिया, ऑर्गेनाइजेशन मिला, जहां पर चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, मैं गणेश गेट पर सेवा कर रहा हूं, मैं वहां देखता हूं कि हर जात का आदमी आ रहा है। अभी तक मैं जितने मठों में गया हूं या जितने संस्थान से मैं जुड़ा हूं वहां पर किसी विशेष एक जात या धर्म के लिए
जी,
जात ना कहें धर्म कहें,
हाँ।
धर्म के लिए जो है वहां पर लोग जाते थे, हिंदू है तो हिंदू का हिंदू जा रहा है, मुस्लिम का है तो मुस्लिम, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं।
हमारे तो सिंबल ही सर्वधर्म सिंबल है
जी, जी।
और हमारे भजनों में भी हम तो भगवान को हर नाम से पूछते हैं
जी जी जी।
बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, कुछ और बताना चाहेंगे आप आपके अनुभव के बारे में?
नहीं जी, बस इतना मैं और लोगों से कहूंगा कि जो मैं आने में लेट किया, मुझे ऐसा लगने लगा है, मैं रियलाइज कर रहा हूं
जी,
मैं पिछले चार साल से इस मतलब इसके बारे में, इस संस्थान के बारे में जानता था। मेरे मामा जी जो मेरठ से बिलोंग करते हैं श्री आर पी त्रिपाठी जी, उन्होंने मुझे इस संस्थान के बारे में बताया था। मैं उनसे अक्सर, वो मुझसे इस ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों के बारे में बातचीत करते थे, वहां पे जो कुछ सेवा वगैरह करते थे मैं उनमें इन्वॉल्व होता था, लेकिन वो जज्बा वो मेरे अंदर नहीं आता था या मैं उस लगन के साथ नहीं जुड़ पाता था जो अब जाने के बाद मेरे अंदर लगन होगी।
हाँ।
तो मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि जो समय मैंने नष्ट किया है वो नष्ट न करें, और जितना जल्द से जल्द हो पुट्टा परती आए, और बाबा का आशीर्वाद होगा तभी वो आएंगे।
बिल्कुल।
और तो मैं यही बाबा से प्रार्थना करूंगा कि मुझसे जो कुछ गलतियां हुई हों या मैं फर्स्ट टाइम आया हूं, यहां के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता थे, अगर कोई गलती भी हुई हो तो उसको माफ करेंगे और पुनः इस में आने के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।
साई राम।
साई राम।
सो डियर लिसनर्स, दैट वाज मनोज कुमार शर्मा शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ पार्ट इन द प्रशांति सेवा। इनफैक्ट He has come to Prashant Nilayam for the first time and is being part in the Prashant Seva for the first time. So he said, as soon as he came inside the Prashant Nilayam campus, he felt the divine atmosphere and the spiritual vibration of the ashram. And after his Seva here, he is telling that God really resides here in the campus. Well, it's of course true. Swami Bhagwan in his physical form as Sri Satya Sai Baba was here for more than 8 decades. Well, further in the conversation, he said that he wants to come here again and again for rendering service, and he says that he got what he was looking for from many years after coming to Prashant Nilayam Ashram, that is peace of mind and harmony. And in fact, it seems he was inspired by seeing people from different faith and religion here in the ashram. So after Manoj Kumar Sharma, let's listen to another Seva Dal member who has been coming to Prashant, who came to Prashant Nilayam this time, this fortnight from the Uttar Pradesh state for the first time. And he is Biren Nath.
Sai Ram.
Sai Ram.
Aapka parichay dijiye please.
Main Biren Nath Misra, Balrampur, Uttar Pradesh se aaya hoon.
Ji. आपका पहला अनुभव है प्रशांति में ड्यूटी करने का?
हाँ मैडम, ये मेरा पहला अनुभव है और प्रशांत निलय में मैं पहली बार आया हूँ।
कैसा चल रहा है
यहाँ का वातावरण और यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। हर तरफ जो मैं फोटो देखता हूँ वही मुझे दिखाई देते हैं कि साईं बाबा इधर से आ रहे हैं, साईं बाबा हमसे बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इस तरह से मुझे माहौल यहाँ का दिखाई दे रहा है।
क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप यहाँ?
मैं N8 और N9 में ड्यूटी कर रहा हूँ। वहाँ पे फॉरेन और ओवरसीज NRI विभिन्न देशों के लोग आते हैं, क्योंकि विश्व में भगवान की महिमा बहुत ज्यादा फैली हुई है और सभी लोग इससे कोई अपरिचित नहीं है, तो उससे हर देश के लोगों से बातचीत करने के लिए, उनकी संस्कृति के लिए के संस्कृति जानने का एक सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। जब हम उनसे बात करते हैं तो उनके जो हमारे ईश्वर हैं, साईं बाबा हैं, तो उनका जो इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा लगाव है, उससे मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि हम लोग बहुत लेट कर दिए यहां पे आने में,
मगर आप अभी भी शुक्र मनाइए। आप तो जवान इंसान है, आपके पास बहुत टाइम है, आप छोटे हैं, अभी तो आप आ सकते हो। अगले 60 साल तक आप सेवा कर सकते हो।
यस मैडम, हाँ
करेंगे,
हाँ,
आते रहेंगे,
करेंगे,
स्वस्थ रहिए और आते रहिए।
हाँ, करते रहेंगे मैडम।
तो जब आप वापस जाएंगे उत्तर प्रदेश, क्या बताएंगे वहां के लोगों को इस अनुभव के बारे में?
हम जब अपने वहां जाएंगे, अपने जिले में जाएंगे, तो उनसे ये बताएंगे कि जब मैं वहां पे गया हूं तो मैं वहां पे देखा कि कुलवंत हाल में जब आदमी बैठता है तो उसके मतलब दिमाग में कोई भी व्यसन, कोई भी गलत विचार, कोई भी घृणा, कोई भी नफरत, कोई ऐसा दोष नहीं रह जाता है, क्योंकि शायद ये भगवान का कृपा है। पहले हम सुनते थे कि हाँ भगवान अयोध्या में भी हैं और मथुरा में भी हैं, लेकिन वहां पे खाली एक बात मुझे रहता था कि वो भगवान वहां पे हैं, लेकिन कर्म योग का कोई योगदान नहीं रहता था। जब मैं यहां पे पहुंचा तो कर्म योग को प्राथमिकता दी गई है, तो उनसे हम कहूंगा कि भगवान तक पहुंचने का सबसे पहला और सबसे सरल माध्यम ये कर्म योग है, जिसके माध्यम से भगवान तक हम पहुंच सकते हैं, उनके माध्यम उनके यहां हम मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। उनसे बताएंगे कि हम यहाँ कितने अनुशासित, यहाँ पे हम अनुशासित नहीं रहते हैं, इनडिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंच गए हैं तो मुझे कितना अनुशासन है कि एक दूसरे के साथ रहते हैं, विश्व के विभिन्न धर्म के लोग मिलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, और जब बातचीत करते हैं तो किसी के प्रति कोई घृणा नहीं रहती है। सब लगता है कि हम इतना अपने जो ब्लड रिलेशन होते हैं उतने संबंध गहरे नहीं बन पाते हैं जितना मुझे इस कुलवंत हाल या इस प्रशांत निलय में मेरे संबंध बन गए हैं। ये हम उनको शेयर करेंगे, उनके द्वारा जो गलत विचार है वो जो, या कोई मान लीजिए कोई धूम्रपान करता है, तो उसको छुड़ाने का मैं भरसक प्रयास करूंगा अपने क्षेत्र में। हर महीने मेरा मैं जो भी यथा सामर्थ्य होगा उसके अनुसार सम्मेलन करने का प्रयास करूंगा और उनको भोजन कराने का, उन्हें अपने यथाशक्ति और लोगों के सहयोग से वस्त्र दान भी करने का प्रयास करूंगा। कुछ बच्चे जो गरीब हैं नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं जो है कुछ पेंसिल कॉपी इत्यादि उनको प्रदान करने की कोशिश करूंगा, और ये सब तभी संभव है जब साईं बाबा की हमारे ऊपर कृपा है रहेगी, और जब हम जब तक कृपा है तब तक मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं साईं बाबा के चरणों में ये सुअवसर हमेशा प्राप्त करता रहूं और कार्य देश के लिए और पूरे संसार के लिए करने का प्रयास करूं।
बहुत धन्यवाद, और मैं ये भी कहूंगी अपने जिले से अगले साल ढेर सारे लोगों को प्रेरित करके सेवा में लाइएगा।
यस मैडम, मैं चूंकि एक शिक्षा से जुड़ा हूं तो हर जगह जाऊंगा, हर मीटिंगों में जाऊंगा और हर जगह।
आप भी शिक्षक हैं?
हाँ, मैं शिक्षक हूँ, तो इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि अपने अनुभव को उन लोगों को बांटें और उनके सुख दुख में शामिल हों, उनको हमेशा प्रेरित करें कि हम जो है जहाँ भी जाते हैं हर जगह भगवान हैं, लेकिन एक बार आपको शांति अगर पाना है तो आप प्रशांत निलयम पुट्टवर्ती में जरूर जाइए।
बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा संदेश लेके आप वापस जा रहे हैं। धन्यवाद। साई राम।
साई राम।
So dear listeners, that was Biren Nath, who just like Manoj Kumar Mishra came to Prashant Nilayam for the first time and participated in Prashanti Seva for the first time. Well, how we concluded was very nice. He said that if you want Shanti, that is peace in life, then at least once you should come to Prashant Nilayam. So Biren Nath was deeply attracted by the Karma Yoga which he saw in Prashant Nilayam Ashram. The Karma Yoga, that is the path of action, good action, which which is the selfless service, and it's a path to liberation. And further, Birendranath said that sitting in Kulanth Hall, he felt that he was getting transformed from inside. That is, he was not getting any bad thoughts. And so he further said that once he goes back to his village, he wants to serve in his village and bring about transformation. So, dear listeners, let's listen to a few more Sevadal members with whom yesterday Radio Sai's Karuna Munshi had conversation, and this conversation is in Hindi. So let's listen to a few more Sevadal members who came here for the first time to render Prashanti Seva.
Sai Ram Sanjeev Kumar Tiwari ji, Radio Sai mein aapka swagat hai. Aap hame bataiye, aap kahan se aaye hain, aap kya karte hain?
Gonda se aaye hain ji. Gonda se.
Gonda, Uttar Pradesh se. Aur wahan kya karte hain aap?
Ji, wahan main kheti ki kaar samare.
Achha. कैसा पहली दफा आप निकले अपने गांव से, इतना दूर आए हैं दक्षिण भारत
जी,
और प्रशांति नीलम पहली बार आए और सेवा दल की ड्यूटी कर रहे हैं, कैसा रहा अनुभव?
बहुत अच्छा लगा हमें.
क्यों कह रहे हैं आप अच्छा लगा, किस तरीके से अच्छा लगा?
जी हाँ, मैं ड्यूटी कर रहे हैं.
हाँ,
ड्यूटी कर रहे हैं जी कुलम थाल में. जनरल रोपार का नाम है गेट पे.
अच्छा,
वहीं मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का कारोबार.
और जब आप वापस जाएंगे अपने परिवार को, अपने गांव में लोगों को क्या बताएंगे यहाँ के बारे में?
यहाँ के बारे में बताएंगे कि आप लोग चल के वहां भी दर्शन करिए और देखें कैसी व्यवस्थाएं हैं.
दोबारा आएंगे सेवा में
जी,
और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आएंगे. देखिए, आप मुझे बताइए, यहाँ पे आप इतने दूर से आए, इतना आपने खर्चा किया, आपको यहाँ कोई पैसा नहीं मिलता, सारा समय आपको इतनी मेहनत करके ड्यूटी करनी है
जी,
और आप फिर दोबारा आना चाहते हो
जी,
क्यों
आना है? कि हमें यहाँ का वातावरण और सारे सुविधाएं बहुत अच्छे लग रहे हैं जी. यहाँ सब सेवा दल लोग मिलके साथ निभाते हैं, कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं है जी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.
बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, बहुत बहुत धन्यवाद. साई राम. साई राम प्रेमचंद्र तिवारी जी,
जी.
अपना परिचय दीजिए.
जी, माय नेम इज प्रेमचंद तिवारी
जी. कहाँ से
आया? मैं डिस्ट्रिक्ट गोंडा से यूपी से आया हूँ.
आप तो बहुत ही यंग लग रहे हैं, क्या करते हैं वहाँ?
जी, वहाँ मैं स्नातक भी कर रहा हूँ और टीचिंग भी कर रहा हूँ.
अच्छा
जी,
और ये आपका पहला अनुभव है प्रशांति नीलम आने का?
जी, मेरा.
कभी आप यूपी से बाहर निकले थे इससे पहले?
नहीं,
पहली बार अपने गांव को छोड़ के इतना दूर दक्षिण भारत आए. क्यों आए, इतना खर्चा आपने क्यों किया?
जी, 2004 से मैं अपने गुरुजी से जुड़ा, जो हमारे ग्रुप लीडर श्री अखिलेश तिवारी हैं, वो भी एक संस्था चलाते हैं, और संस्था में जाकर मैंने वहां भजन भी होता है, और संस्था में जैसे 30 नवम्बर होता है, भगवान बाबा का जन्म होता है, वहाँ वो महिला दिवस के रूप में महिला दिवस भी मनाते हैं, और महिला दिवस मनाते जब तो वहाँ वस्त्र बांटते हैं.
अच्छा,
जितने वर्ष के बाबा होते हैं उतने वो वस्त्र भी बांटते हैं, और वहाँ हमारे जो हमारा गांव है उसमें कई गांव में कार्यक्रम होता रहता है बीच बीच में, मैं उसी को देखकर प्रसन्न होकर मैं यहाँ आया हूँ.
अच्छा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपने क्या सेवा में क्या ड्यूटी की?
यहाँ सेवा में मैं कलवट गेट पे रहता हूँ.
अच्छा,
जो गाड़ियाँ आती है उनको मैं इन और आउट करता हूँ.
हाँ.
और जी, रात को जो चाय होता है सेवा दलों को मैं चाय पिलाता हूँ.
अच्छा
जी,
कैसा रहा अनुभव?
अनुभव जी बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और यहाँ जो प्रशांति इसका नाम है जैसे.
हाँ.
वैसे यहाँ पर शांति हमें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. मैं सोचता हूँ कि मैं अपने गांव में जाकर इस शांति को बढ़ावा दूँ.
वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा. ऐसा ही अगर आप जैसे जवान लोग ऐसा सोचे और वापस जाके भारत के अलग अलग प्रांतों में जाके ये प्रशांति बढ़ाए, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है हमारे लिए? बाबा का मिशन बढ़ता रहेगा. आपको लगता है आप दोबारा आएंगे यहाँ?
जी सर, मैं दोबारा आना चाहता हूँ और बहुत से लोगों को लाना भी चाहता हूँ यहाँ पे.
ओ, वेरी गुड, ये सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद.
साईराम.
साईराम जीतपाल सिंह जी.
साईराम.
आप कहाँ से आए हैं और अपना परिचय दीजिए, आप करते क्या है वहाँ?
मैं जीतपाल सिंह नेगी देहरादून सुभाष नगर से आया हूँ. मैं अभी जस्ट रिटायर आया हूँ आर्मी से.
अच्छा.
और इसलिए ये मौका मिला मेरे को कि मैं यहाँ प्रशांत प्लेसी हूँ. जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा मैं, तो लोगों से पता चला मेरे को भजन में कि वहां जाना है, तो तब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुके मैं यहाँ सेवा में आया फर्स्ट बार।
कैसा रहा पहली बार आने का अनुभव?
बहुत ही अच्छा रहा और इसे मैं रियली दिल से दिल में है मेरे पर मुंह से क्लियर नहीं बता सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा अनुभव रहा।
भारतीय सेना में तो बहुत अनुशासन है, हमारे आश्रम में भी अनुशासन है, मगर हमारा अनुशासन एकदम प्रेम प्रेम वाला अनुशासन है, प्रेम से जुड़ा हुआ।
यस हाँ, ये बहुत प्रेम से जुड़ा हुआ। भारतीय सेना में अनुशासन है परंतु उससे भी ज्यादा अनुशासन मुझे यहाँ लगता है।
बिल्कुल,
क्योंकि वहाँ पे जो अल्कोहल और ये जो इश्यू होते हैं उसे अनुशासन बाद में बिगड़ जाता है।
हाँ।
परंतु यहाँ देखता हूँ मैं जो प्यार है उसके उसे कई गुना आगे लाखों।
और यहाँ का वातावरण एकदम सात्विक है, आश्रम का है, तो ऐसी कोई गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती यहाँ।
बिल्कुल सही बात है, यहाँ
बहुत ही पवित्र है हमारा।
बिल्कुल इतना पवित्र है कि इसको बोल नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। और इसके तुलना में मैं आर्मी का डिसिप्लिन देखता हूँ तो कुछ भी नहीं लगता। मैं तो ये सोचता हूँ आर्मी को खुद यहाँ के डिसिप्लिन से सीखना चाहिए और यहाँ ट्रेन होने चाहिए।
मैं भी आपसे सहमत हूँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन हमारे दिल से आता है, हमें ऊपर से किसी ने छड़ी से मार के तो बोला नहीं है ना।
बिल्कुल सही,
यहाँ पे तो लोग खुद चाहते हैं ऐसा होना।
हाँ,
क्योंकि बाबा की प्रेजेंस में तो कोई ना तो ऐसा गलत विचार आता है ना कोई गलत काम करने की हिम्मत होती है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तो आपको लगता है आप वापस जब जाएंगे, कौन सी जगह से आए आप?
मैं देहरादून से।
देहरादून से, तो जब आप वापस जाएंगे देहरादून में, आप क्या बताएंगे वहां के लोगों को यहाँ और अपने परिवार के सदस्यों को क्या बताएंगे?
मैं पहले ही अपने परिवार के सदस्यों को या अपने इलाके में जितने शांति के बारे में, प्रेम के बारे में बताऊंगा, बाबा के मिशन के बारे में बताऊंगा। वैसे मैं बताता हूँ परंतु अब और डीपली जाऊंगा इसको, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी मैं लोगों को यहाँ के अनुभव के बारे, जो बेचारे नहीं आए किसी कारणवश, उनको भी यहाँ के बारे में, शांति के बारे में बताऊंगा, जो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ गेन किया उसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा मैं गांव में जाऊंगा, अपने इलाके में जितने भी साइंट डिबोटी हैं या नॉन साइंट डिबोटी, उनको भी एकत्रित करूंगा, एक जॉब पर करूंगा और भजन का आयोजन करूंगा, उनको बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम तब तक ऐसे मानव जीवन मिलने के बाद हम मानव जीवन नहीं जी पा रहे, हम पशुवत की जिंदगी जी रहे हैं, इससे हमें ऊपर उठना है और सही मानव जिंदगी जीना, जिसलिए हमें भगवान ने प्रतिमा भेजा है।
बहुत अच्छा, अगली बार और लोगों को लेकर आएंगे सुभाष नगर देहरादून से?
हाँ श्योर श्योर, बहुत लोगों को मैं कोशिश करूंगा, जोड़ूंगा और उनको प्रेरित करूंगा और उनको यहाँ लाने की कोशिश करूंगा।
बहुत अच्छा लगा सुनके, धन्यवाद।
साई राम।
साई राम।
Sai Ram, dear listeners, you are tuned to Asia stream of Radio Sai Global Harmony, and this is the segment Service Love in Action, and I am Team Radio Sai's Raghu. Well, today in the segment, I am playing for you a conversation with the few members of the Seva Dal who have come here for rendering the Prashanti Seva from June 1st of this month to 15th of this month, and they are from this Indian state Uttar Pradesh. And 1300 Sevadals have come from that state, of which about 400 of them are coming here for the first time to render Prashanti Seva. And right now you are listening to the experiences of few members of this group. So this conversation, as you heard, is in the language Hindi, and Radio Sai's Karuna Munshi had the conversation yesterday. So right now, few minutes back, you heard to Mr. Sanjeev Kumar Tiwari, Mr. Prem Chand Tiwari, and Mr. Jeetpal Singh sharing their experience. So as you heard, Jeetpal Singh is an army man, and he feels that he is attracted by the discipline which is there in the Prashant Nilayam Ashram. In fact, he was in Indian Army, and he says that he feels the discipline here is more than what he saw in Indian Army, and he also feels that few of the army men should come here and get trained in the discipline that is present here. Well, further he said that getting a human birth is very rare, and after getting a human birth, we should make use of this God's gift, and we should always serve our fellow man. Well, dear listeners, that is what our Bhagwan Baba has always said: love all, serve all, help ever, hurt never. So, dear listeners, I've got two more clips of Sevadal members speaking their experience of rendering selfless service here in the ashram. So, I'll be playing for you right now. Mr. Hukum Sri Yadav, who will be telling his experience of being the Sevadal, and he has come here for the first time as others.
Sairam sir.
Sairam.
Apna parichay dijiyega.
Ji, mera naam Hukum Singh Yadav hai. Main Balrampur district UP se aaya hoon.
Kya ye aapka pehla anubhav hai?
Ji, ji. Yahan aane ko ye first time pe aa raha hoon yahan pe.
Kaisa laga aapko?
Bahut acha laga yahan pe aake.
Kya duty kar rahe hain aap?
Ji, isme main 9-8 mein meri duty hai. 9 mein bhi dekhta hoon and 9 mein bhi. Aur 8 mein dekh raha tha, is samay abhi 9 mein dekh
raha hoon. Wahan pe foreigners ki registration wagaira hoti hai.
Ji, ji.
To yahan aake ye jo sarvadharm dekh ke videsh se log aa rahe hain, Bharat ke har prant se aa rahe hain, aisi jagah to dusri hai hi nahi kahin duniya mein, Bharat mein nahi, duniya mein nahi. Aapke liye kya seekha aapne yahan rehke?
Didi, yahan aake is 10-12 din mein maine bahut kuch seekha aur usme maine dekha ki yahan pe jo abhi logon ne bataya ki discipline hai, to discipline college mein schools mein sikhai jati hai, lekin yahan pe aake wo cheez andar se nikal jati hai apne aap, koi batata nahi hai. Aapko agar canteen mein jana hai to room mein jana hai, aapko duty karni hai to timely jana hai. Main apna anubhav bata raha hoon, meri duty raat mein 1-2-7 hoti hai. To ghar pe hota tha to सो गया तो सो गया, कब उठा, लेकिन यहां पे 12:30 तक नींद खुल जानी है अपने आप, फ्रेश हो जाना है, राइट टाइम पहुंच जाना है. तो और दूसरी चीज ये है कि यहां पे जो और स्टेट्स हैं, जैसे यूपी है जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां पे जो बैकवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट्स है अभी, वहां पे कोई, जैसे मतलब ये है कि जैसे बताया गया कि अभी कोई डिसिप्लिन या ऐसी कोई चीज नहीं है, लोग कुछ भी खा लेते हैं, इधर उधर पत्ते फेंक देते हैं, या उनको टॉयलेट जाना है, कहीं जाना है तो कुछ नहीं, तो कहीं भी. लेकिन यहां पे आदमी कोई बताता नहीं, लेकिन अगर उसने चाय भी पिया तो वो डस्टबिन का यूज करेगा कि इधर नहीं फेंकना है. तो
वातावरण में कुछ ऐसा है कि अनुशासित खुद ही हो जाते हैं,
मतलब वो अनुशासन सेल्फ आ जाता है, उसको करता नहीं कि भैया तुमको ये करना है, आपको ऐसे करना है, वो डस्टबिन ढूंढेगा, पिएगा. वो मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं, तो जब अपनी फीलिंग है तो ऐसे, मतलब जितने भी डिवोटीज हैं और सेवा करने के भाव से आए हैं, वो सब में ये फीलिंग्स आ जाती है. और यहां आने पे हमको ये लगा कि जब फॉरनर्स आते हैं, ब्रिटेन से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, और थाईलैंड से आ रहे हैं, बैंकॉक से आ रहे हैं, तो उनके अंदर जब इतनी भक्ति भाव है, तो हम इंडियन हो के हमें तो और बाबा के लिए भक्ति भाव दिल में उत्पन्न होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव होनी चाहिए. तो ऐसी चीज जो भी बहुत हम अपने इलाके की बात कर रहे हैं, वहां कम है, सुन तो रहते हैं हम साईं बाबा के बारे में, लेकिन यहां पे आके मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अभी जब ये फॉरनर्स जो हैं, इतना इनके अंदर है भक्ति भाव, इनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इनके पास शांति नहीं है, पीस नहीं है, ये पीस के लिए यहां आते हैं, सब कुछ है, लेकिन हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि शांति के लिए बाबा के आश्रम में आना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए. शांति कैसे मिलेगी? पैसा तो हर आदमी कमा सकता है, लेकिन वो शांति नहीं पा सकता. लेकिन यहां पे आने के बाद मुझे बहुत शांति मिली. और मैं एक दो घटनाओं का वर्णन करना चाहूंगा. पिछली बार मेरे कुछ बलरामपुर से यहां पे पार्टिसिपेट किए थे, मेरे दोस्त लोग भी आए थे, तो वो लोग यहां से ये फोटोज वगैरह, भभूत वगैरह ले गए थे, तो उन लोगों ने हमको भी एज ए प्रसाद के रूप में दिया था. उन्होंने दिया तो कि इसको फोटो रखो जहां पूजा वूजा करते हो. तो मैंने पूजा वूजा सच्चे लगन मन से स्टार्ट किया करना, और भभूत को मतलब थोड़ा सा जैसे यहां पे लोग लगा लेते हैं और मुंह में डाल लेते हैं, तो उससे हमारा चलता रहा. बीच में लास्ट ईयर मेरी मां, जिनकी आयु कम से कम 90 के लगभग होंगी, जा रही थी तो गिर पड़ी, पैर टूट गया, उनका ऑपरेशन हुआ. उससे पहले हमारे एक दोस्त थे, तो उनकी भी मदर का वही सेम कंडीशन हुआ था. दोनों का ऑपरेशन बहराइच डिस्ट्रिक्ट में हुआ, अलग अलग हॉस्पिटल में. तो उनको हमने कहा कि अम्मा तुम बाबा के फोटो के लिए अपनी रख लो, इनके प्रति अपने मन में लगन श्रद्धा भाव उत्पन्न करो, इनसे अपनी मन्नतें मांगो कि बाबा मेरे पैर ठीक हो जाए, मैं फिर चलने लगूं वैसे ही. तो ऑपरेशन हो गया, वो एक महीने फिलहाल बेड पे थी, सेवा हुई, उसके बाद थोड़ा सा अपना एक चलने फिरने लगी वाकर से. और अब यह कंडीशन है कि वो स्टिक भी नहीं लेती हैं और प्रॉपरली बहुत अच्छे ढंग से चल लेती हैं.
और उनकी उम्र लगभग 90 साल
जी,
है.
90 साल की है. और ये मेरे मित्र हैं, श्री वीरेंद्रनाथ मिश्रा जी हैं, जो ये सब भली भांति जानते हैं. और हमारे फ्रेंड्स लोग भी हैं, वो भी कहते हैं कि यार तो करिश्मा है, तुम्हें कहा करिश्मा नहीं है, सब बाबा का आशीर्वाद है, मेरा छोटा सा बच्चा है, तो वो मैं आ रहा, तुमने कहा बेटा मैं जा रहा हूँ, दादी की देखभाल कौन करेगा, तो कहा पापा आप जाओ और बिल्कुल परेशान ना हो, मैं दादी की देखभाल कर लूंगा, उनको पानी दे दूंगा, खाना खाएंगे तो खाना खिला दूंगा। और दूसरा मैं वर्णन करना चाहूंगा यहाँ पे कि जब हम लोग आ रहे थे तो अचानक कुछ लोगों का प्रोग्राम कैंसिल हो गया।
अच्छा।
20 लोग आने वाले थे लेकिन कहीं शादी हो गया, एक लोग हैं तो उनको उन्होंने रात में इन्फॉर्म किया करीब 11 बजे कि यार हम नहीं जा पाएंगे। तो ये मैं सोचता हूं कि बाबा का बुलावा था और सबके नसीब में नहीं होता है। उसी बीच में हमारे एक मित्र हैं अयोध्या प्रसाद यादव जी, तो उनके गांव से एक बच्चा आ गया, तो अचानक ये हुआ कि जब लोग नहीं जा रहे हैं तो यार तुम चले चलो, तो वो आ गया। और मैं बताता हूं कि वो अभी ज्यादा एज नहीं होगी, वो तंबाकू खाने की आदत थी, वो ड्रिंक भी करता था, सिगरेट भी पीता था, लेकिन 29 से जिस दिन से वो आया है उस दिन से उसने बिल्कुल छोड़ दिया। और यहां 10 दिन रहते हुए उसको हो गए हैं, उसने एक भी सिगरेट बीड़ी पान बीड़ी सिगरेट या ऐसी कोई चीज नहीं। हम लोग उसको गुस्से में कहते हैं आप तुम यहां से जाओगे तो फिर स्टार्ट कर दोगे, तो कहता है नहीं मैं बाबा की समाधि के सामने मैंने प्रण ले लिया है कि अब मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगा।
पूरा जीवन बदल गया जी।
तो उसको फिर मैं चिढ़ाने के लिए कहता हूं कि नहीं तुम जाओगे और बोतल देखोगे वैसे तुम्हारा मन ललचाएगा, तुम फिर उसको लगा लोगे गले, तो कहता है नहीं होगा, मैं छोड़ दिया है मैंने, अब कोई जबरदस्ती थोड़ी पिला देगा। तो मैं ये सब सोचता हूं तो कहता हूं कि बताओ ये, और काफी सारे पैसे उसने प्रॉपर्टीज बर्बाद कर दी पीने के चक्कर में। तो मैं सोचता हूं इससे बाबा का करिश्मा है कि जो आदमी 29 से जैसे ट्रेन में हुआ हो कि
और उसे आना भी नहीं था, अचानक ही आ गया किसी और के बदले
जी
में।
नहीं दी आना भी नहीं था,
भगवान का ही बुलावा था
जी। वही मैं सोच रहा हूं कि जिसका बुलावा नहीं था वो आ गया, और जिसका रिजर्वेशन था 6 महीने पहले से वो रात में इन्फॉर्म कर रहा कि मैं ऐसा है कि नहीं जा पाऊंगा, बाबा का करिश्मा है। यहां पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे साथ में जो है एक देहरादून के हैं विजय चंद्र ठाकुर साहब, तो वो मेरे साथ में ड्यूटी करते हैं, तो बड़ा अच्छा भाई नेचर बहुत अच्छा है, उनसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। जो हमारे ग्रुप लीडर हैं कटारिया जी, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत उनकी जो टॉकिंग है इंग्लिश टॉकिंग है बड़ी अच्छी है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग हिंदी भाषी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पढ़ते तो हैं इंग्लिश लेकिन वो फ्लुएंट नहीं होता है, समझ लेते हैं तो टॉकिंग नहीं कर पाते हैं। तो यहां 10 दिन आने के बाद बहुत अच्छी हम लोगों की फ्लुएंस भी बन गई थोड़ा, और
प्रैक्टिस होती रहती है फॉरेनर से बात करके।
तो अब थोड़ा हेजिटेशन होता था लेकिन अब अच्छे से थोड़ा मतलब ये उनके बारे में बता देना है, सुन लेना समझ लेना कि यहाँ कहाँ से आए कैसे क्या है,
कितना
तो
कुछ सीखने को मिल रहा है
बहुत कुछ। और वो जब ठाकुर साहब से बैठते हैं तो हम तो समझते थे कि वैसे होंगे लेकिन उनको इंग्लिश में बात करें बहुत अच्छी बात करेंगे, इंग्लिश भी उनको आती है, इंग्लिश ही नॉलेज है, इंग्लिश हिंदी नेपाली, तो बैठे रहते। तुमने कहा यार बताओ हम जैसे हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम मिलते हैं कि आपसे बढ़कर मतलब मिलकर बड़ी खुशी, तो उन्होंने कहा, हमने कहा नेपाली में इसको क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा तपाई सिंह बैठा हुआ खुशी लागे हो नेपाली में। मैंने कहा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा तीम रुके नाम हो, अभी कल पंजाबी कुछ पंजाब से लोग आ गए तो पंजाबी में बात करने लगे, अब इत्थे आ। तो उन्होंने कहा यार बताओ ये हम लोग हिंदी के अलावा और इंग्लिश भी नहीं जान सकते, और ये तूने बताया प्यासा नहीं, सब आते जाते रहते सब कुछ हो जाता है, मैंने कहीं कोई एक्स्ट्रा कहीं कोचिंग नहीं ली, कहीं सी पढ़ाई नहीं की, तो कम से कम मैं 5-6 भाषाओं की उनकी जानकारी है। वो फ्रेंच भी बोल लेते हैं, फ्रेंच से बात कर रहे थे जो है, थाईलैंड वाले उनसे इंग्लिश भी बात कर रहे थे, हिंदी में बात कर रहे थे, नेपाली में भी बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हम लोग का सब बाबा की कृपा है, उन्होंने कहा कि मतलब आप पे ही कृपा रहेगी कि हम लोगों पे रहेगी। उन्होंने कहा अंदर से बाबा को याद करो, मन में लाओ, सब पे बाबा कोणा बरसाते हैं, सब पे अपनी कोणा दिखाते हैं, उनका आशीर्वाद सब पे है, लेकिन वो होना चाहिए कि आपके अंदर कितनी फीलिंग है, दिखावा नहीं होना चाहिए, मन से आप आनी है। यहां पे आके मैंने 2-4 किताबें भी नेट टाइम निकाल के जो है पढ़ रहा हूं, तो यहां के बारे में माहौल हुआ जानकारी हुई, और कि गांव था कोई बहुत बड़ा विशेष चीज नहीं था। हमने कहा कि बाबा ने म्यूजियम भी मैं देख चुका हूं, स्कूल और कॉलेजेस भी घूम चुका हूं,
और प्लेनेटेरियम भी जरूर जाइएगा
जी,
अगर
उसको भी कल हम लोगों ने देख लिया है, कल यहां छोड़ा नहीं है, और
वहां पे शो देखा था
जी जी कल हिंदी में था।
देखिए तो कितना परिवर्तन और कितना अनुभव आपको अच्छा मिला यहां
जी दीदी,
ये एक जगह आके लोगों का दिल दिमाग सब सेटिंग ठीक हो जाती है, वातावरण ही ऐसा है कुछ।
कई चीजें इसमें हमको देखने मिली कि यहां जैसे हम लोगों की प्लानिंग थी बालाजी जाने की, तो लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा यार वहां बहुत भीड़ होती है और आपको 300 रुपए टोकन लेने पड़ेंगे, 200 लेने पड़ेंगे, کیوں میں رہنا پڑے گا، پانچ گھنٹے بعد آپ کو درشن ہوں گے. تو کہا یار یہ کیا ہے، جہاں جاؤ تہاں بابا کے درشن کے لیے بھی، بھگوان کے درشن کے لیے بھی پیسے لگ رہے ہیں، اور یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے، کوئی چڑھاوا نہیں،
کوئی چڑھاوا نہیں، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی ٹوکن نہیں.
ٹائم سے جائیے، سب کو بابا کی سمادھی کے سامنے جو سر جھکانے کا موقع ہے. اب اس سے بڑھیا آپ کو کیا ملے گا، کچھ نہیں.
بالکل آپ نے ایک دم صحیح بولا، بہت اچھا لگا آپ سے جڑ کے. آپ کرتے کیا ہیں اتر پردیش میں؟
جی میں ٹیچنگ جاب سے ہوں، ایز اے ٹیچر ہوں.
تو آپ کو تو بہت ہی اچھا لگا ہوگا ہمارے اسکولز دیکھ کر.
جی جی جی،
ہماری یونیورسٹی کالجز.
اچھا نہیں، بہت ہی اچھا لگا اور کافی پریرنائیں ملی، اور کچھ بچوں سے ہم لوگوں نے بات بھی کیا تو انہوں نے اپنا جو ایکسپیرئنس تھا وہ شیئر کیا. اٹین میں ہی مل گئے تھے صبح کے ٹائم، وہ بچہ یہاں پہ شاید ایم بی اے کر رہا ہے، تو اس سے بھی مطلب جانکاری ملی. اور یہاں آنے کے بعد تو جو انبھو ہوا اتنے 10-15 دن کے اندر اندر، اس کا تو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. یہاں پہ آنے کے بعد ایسا لگا کہ جیسے آدمی اپنے ایریا میں رہتا ہے اور اس کو یہ نہیں ہو پاتا کہ ہم سے اتنا لگاؤ ہے. یہاں آنے کے بعد یہ ہوا کہ جیسے جنموں کا ان سے ریلیشن شپ ہو، آتمیے سمبندھ ہو جاتا ہے. میں بتا رہا ہوں جیسے کٹاریا صاحب ہیں تو اپنے بچوں کی ٹریٹ کرتا ہے، جا تو سو رہا ہے جا جلدی، تیری ڈیوٹی ہے، واقعی جا آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں ٹائم ہو گیا ہے، تو اچھا جا جا تو جلدی چائے پی کے، میں تیری ڈیوٹی کر رہا ہوں. تو ایسا تو ایک باپ بھی نہیں بولے گا.
اتنا پیار، بہت اچھا، کیونکہ اس پیار کا آدھار بھگوان بابا ہے.
جی جی،
تو وہ اتنا کڑا سمبندھ ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے کہ ہمیں لگتا ہے ہم سب ایک ہی پریوار کے سدسیہ ہیں، سب بھائی بہن ہیں، سب ہمارے جو ہم سے بڑے ہیں وہ ہمارے ماتا پتا کی طرح ہیں.
جی جی،
وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں سمبندھ میں کوئی سیلفشنس نہیں ہے، کسی کو کوئی اپنا فائدہ نہیں ڈھونڈتا، ہر کوئی اس لیے کر رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ ہم سب مل کے بھگوان کو پرسن کرنے کے لیے یہاں.
جی جی،
اور بھگوان کو کیا، خود اپنی سیوا کرنے، اپنے آپ کو بیٹر بنانے کے لیے.
جی
بہت اچھا لگا آپ سے جڑ کے، بہت بہت دھنیواد.
Saram, dear listeners, so that was Mr. Hukum Shri Yadav, who just like other members of the Sevadal contingent which have come here, which you heard in today's episode, has come to Prashant Nilayam for the first time to render selfless service and be a part of Prashanti Seva. Well, innumerable are their experience of being a Sevadal here at Prashant Nilayam Ashram. Well, talking about the experience, I am reminded of an incident that one of the Sevadals from the state of Gujarat, Mr. Suresh Bhatt, had shared with me. It seems once he had come here to Prashant Nilayam for as Sevadal, and he was given duty in Swami Super Speciality Hospital at Prashant Sindhgaram Gram here at Puttaparthi. So he was in the entrance door of the hospital doing his duty, and in the afternoon or sometime, he saw an elderly lady in the hospital going up and down, and she was feeling very happy. It was as if she was in bliss. So this gentleman, Mr. Suresh Bhatt, wanted to know the reason of her happiness. So he went to her and asked her, "Madam, you look so happy. What is the reason? Is there any special occasion?" And for that, that elderly lady said, "You know what? Right now my son is undergoing an open heart surgery here in the hospital." Well, this gentleman, Mr. Suresh Bhatt, was taken aback. He said, "What, your son is undergoing an open heart surgery and you are not worried or you are not getting any tension and you are feeling so happy?" So for this, the lady said, "See, just before the operation, Sairam told me that you need not be worried, your son will be fine." Well, the Sevadal, Mr. Suresh Bhatt, when he heard this, he thought that Sairam, Swami, has told her that her son will be fine. But dear listeners, when the lady told him that Sairam has told her that her son will be fine, she meant, by telling Sairam, she meant a Sevadal, not Swami. What she meant was a Sevadal had told her that her son will be fine and had told her not to worry. So you see, dear listeners, when we serve others, the beneficiaries see God in us. When we give food or some water to a hungry or thirsty person, he tells us, "Thank you, sir, you are like God to us." They exalt us like God himself. With this, the transformation in us starts. So that is the benefits of serving others. Well, dear listeners, the time right now in our studio is 12:10, and You are tuned to Radio Sai, the live wire bringing you the message of Bhagwan Sri Satya Sai Baba, the message of selfless service and His love. So moving further in this segment, let me play for you an episode from our radio series Serving in the Name of Sai.
Across every state of India, across 125 countries, across political, religious, racial, geographic and linguistic divide, across social and cultural barriers, what compels millions to step forward and reach out to complete strangers in need? Since 1940, when the 14-year-old Satya declared his divine mission, a silent revolution has emerged from a heart that preaches only one language, the language of unconditional love. Through his massive service projects, Bhagwan Baba has redefined spirituality as social activism, responsible charity and conscientious citizenship. Be it a service project in remote Andhra Pradesh or at a slum in Zimbabwe, volunteers from all backgrounds are transforming our world by serving in the name of Sai.
Dear listeners, welcome to the Radio Sai series, Serving in the Name of Sai. In this program, we bring you stories of the service activities by Sai volunteers across India and the world. Today's segment features a Sai Seva project by the young adults of the United States of America in the aftermath of a devastating hurricane that hit the coastal regions of USA in 2005. Baba says, "Even the smallest act of service, done with selflessness, pleases God immensely." A group of youth in the US could not rest after they heard of the painful losses in the aftermath of Hurricane Katrina, and you will now hear how they worked to help a ravaged town.
It was the morning of 29th August 2005. A giant cyclone storm spiraled into the southern coast of the United States and left behind death, destruction, floods, and many homeless. Hurricane Katrina had hit the US. With a wind speed of 280 kilometers per hour, it was one of the deadliest hurricanes ever on the Atlantic Ocean.
Hurricanes are huge spiraling tropical storms that hit with wind speeds of over 250 kilometers per hour and can splash rainfall of over 9 trillion liters in a day. While they are called cyclones when they emerge from the Indian Ocean and the Bay of Bengal, they are known as hurricanes when they rise from the Atlantic Ocean. These storms are generated during summers when the heat over the ocean waters rises to high temperatures. In short, hurricanes are spinning heat engines accompanied by thunderstorms.
Hurricane Katrina had formed over the Bahamas on 23rd August 2005 and crossed southern Florida as a modern Category 1 hurricane, causing some deaths and flooding there. However, it strengthened rapidly at the Gulf of Mexico and reached the US southeast coast as a Category 5 hurricane. Though the storm weakened before entering Louisiana on 29th August as a Category 3 storm, it had already caused severe destruction along the Gulf Coast and from central Florida to Texas.
Hurricane Katrina caused a loss of a staggering $81 billion, the costliest natural disaster in the history of the United States. At least over 1,800 people lost their lives. Again,
it was the largest number killed in any hurricane in the U.S. since 1928.
As the news of the extent of the catastrophe spread, the SAI organization sprung into action. The catastrophe was the central concern at the Labor Day retreat held at Chicago, Illinois, from 2nd to 4th September. It was evident that the government machinery would not be able to handle the situation on its own. The plight of the Katrina victims was appalling. Something fast had to be done. The SAI young adults who had gathered at the retreat immediately formed a task force to reach out to the victims. They brainstormed and exchanged information and ideas to help the victims. As information about the extent of damage came in, it became clear that help would be needed not only for immediate relief, but also over an extended period of time. The group then identified specific areas which needed urgent attention and further classified the projects as short-term, mid-term and long-term on the basis of the extent of the damage.
Instead of plunging into service impulsively, the group then spent some time planning the whole exercise. Thus, from September 4th to 20th, 2005, the task force core group worked tirelessly and addressed several issues, including if they should undertake the relief efforts on their own or collaborate with other groups like the American Red Cross. They also tried to find out grassroots organizations like churches in the area which could provide local assistance to the team of SAI devotees. Finally, they decided that the team would personally go to the affected areas instead of merely sending supplies from different places. And the team included two young adults, each from Minneapolis and Chicago, Memphis and Atlanta, one young adult each from Indianapolis and Cleveland, four from Dayton, five from Southfield, and two adults from Ann Arbor. After gathering enough information about the areas where help was most needed, the task force decided to concentrate the Seva activities on a town named Tylertown in Mississippi.
Tylertown was a small place with 2,000 residents, 50% of whom were Caucasians and 47% African Americans. The town had four schools, a 49-bed Walthall County Hospital, seven physicians and also a Red Cross Center. On the 21st September, the SAI volunteers contacted Reverend Ellis Warren of the Lee's Baptist Church in Tylertown. For the next 9 days, the SAI youth worked ceaselessly and made a list of the needs of the affected people in Tylertown. To begin with, there were 40 to 50 families that urgently needed food supplies. Then, a lot of elderly people needed looking after. Even though the Red Cross Center was distributing relief in the area, the long queues made it difficult for the old to avail of them. The hurricane had caused large-scale structural damage. The roofs of the homes and schools in the town had been blown away. A lot of debris left behind in the storm's aftermath was blocking roads and delaying the relief efforts. Supplies from all around the region, including Minneapolis, Illinois, Tennessee, Michigan, Indiana, Ohio, and Kentucky, were collected and gathered in the city of Dayton in Ohio, which was chosen as the central drop-off point. These supplies were then collectively transported to Tylertown.
The young SAI volunteers divided themselves into groups to organize the task ahead. While some took care of the travel arrangements of the volunteers, others focused on the distribution of supplies, food, medicines, and so on. The third group took charge of cleaning the debris and repairing the damaged buildings, while the fourth took the responsibility of contacting and coordinating with the local authorities. This group met Reverend Warren, who assured them of all possible cooperation. They also contacted the Mississippi Emergency Management Agency. Impressed by the spirit of selfless service of the SAI volunteers, the sheriff's office there, the police superintendents, the mayor of the town physicians and the hospital authorities, all of these groups came together to help the Sai youth in their task.
The team reached Tyler Town on 30th September at 11 a.m., while the shipment of supplies arrived at 4 p.m. Due to the huge amount of supplies received from various places, it took the volunteers almost 2 hours to unload the packages. Through the night, the volunteers sorted out the supplies and packed them neatly for distribution. Next day at around 8 a.m., the families identified for receiving the supplies gathered at Lee's church. The recipient families were delighted with not just the help, but also the manner in which the seva was rendered. Many of them commented that they were touched by the humility and love of the volunteers. The families were also sent for health checks from 8 a.m. to 6 p.m. that day.
The teams responsible for clearing the debris also had a busy day, as they removed the huge fallen trees, branches and other debris which were blocking the roads and other access points and thus hampering the relief process. While one group repaired the roofs of damaged houses and school buildings, another team travelled to the neighbourhoods of Picayune and Waveland with relief supplies. Finally, after a hectic but satisfying day, the group of Sai volunteers gathered once again at Lee's church around 7 p.m. Reverend Warren addressed the team and appreciated their efforts, which he said was done in the spirit of true service. This only added to the enthusiasm of the Sai volunteers as they began preparations for the next day with renewed vigor. On the third and last day of the seva, the teams undertook relief efforts at Bogalusa, Louisiana. Here too, they distributed supplies to the needy and cleaned the debris to help the victims restart their lives.
Bhagwan Baba says, offer service to someone in need with a full heart and experience the bliss that results. It need not be something big. It can be a small act, unnoticed by others. But it has to be done to please the God within you and the other person.
Every time there is a need, the Sai organization and its volunteers have always rushed to render selfless seva. However, it would be pertinent to ask ourselves whether there are ways to avoid such miseries caused by natural disasters. And God indeed has shown us a way. Swami has repeatedly stated that human beings and their actions are the cause of such natural disasters. These tragedies occur because man has started to abuse nature and has stopped respecting the forces of Mother Nature. In fact, in his greed and in the name of progress, man has exploited nature and destroyed the equilibrium that is necessary to keep life balanced on this planet.
In fact, in an interview given to Mr. R.K. Karanjia, the editor-in-chief of Blitz News magazine, in as early as 1976, Baba said, "Suffering and misery are the inescapable acts of the cosmic drama. God does not decree these calamities, but man invites them by the way of retribution of his own evil deeds." He adds further that, "Remember, these calamities occur not because of what God has made of man, but really because of what man has made of himself. Therefore, man has to be unmade and remade with his ego destroyed and replaced by the transcendental consciousness, so that he may rise above the karmic bondage to the freedom of averting such disasters. This is the work of the avatar which I am presently doing."
Therefore, it is human greed that is to be blamed for calamities like hurricanes and earthquakes, and the only way to avert them is by learning to live in tandem with nature, or else we will have to pay the price of our folly. God is only a witness, and when He comes down on earth, He is the supreme teacher who trains others by His own life. And the sole powerful message that reverberates in every act, word and deed of Baba is that one should love all sincerely and serve all selflessly. There is nothing more fulfilling than serving in the name of Sai.
Dear listeners, what you heard just now was an episode from our radio series Serving in the Name of Sai. Well, it was a radio documentary, and the narrators of today's episode were K.M. Ganesh and Radio Sai's Pishu Prishti, and the background music was composed here at Radio Sai by Anirudh. Well, in this series Serving in the Name of Sai, there are many more such audio documentaries, and you can download them and listen to it at your leisure. You can download them from our website radiosai.org. Dear listeners, today in the segment Service Love in Action, I played for you the conversation that we had yesterday with the Sevadal members who have come here to Prashant Nilayam to render Prashanti Seva for the first fortnight of this month, that is from 1st of this month to 15th. So 1300 Sevadals have come from the Indian state of Uttar Pradesh, and you know what, 400 of them are coming here for the first time, coming to Prashant Nilayam for the first time and doing the Prashanti Seva for the first time. Well, isn't that very impressive, dear listeners? So you heard the conversation, you heard the experiences of those Sevadas, and they spoke in Hindi, and after listening to the conversation, I tried to summarize what they spoke in Hindi. I tried to summarize it in English. I hope you all have benefited by it and are inspired by it. And today, what you heard were the experiences of the gents Sevadal who have come here. And next week, I'll be playing for you the experiences of the women wing, ladies Sevadal from the women wing from the Indian state of Uttar Pradesh. Well, dear listeners, the time in your studio is 2 minutes to 12:30, and Prem and Arvind are already here for taking over the next segment of today's Thursday Life, that is Afternoon Satsang. So, placing this segment at Bhagwan's lotus feet, I sign off for today, and I'll be leaving for you a bhajan sung by Brother Ajneesh. Jai Sai Ram.
Saira Saisha Mere Saira
Saira Saisha Mere Saira
Saira मेरे प्राण नाथ राम
मेरे बाबा मेरे प्राण नाथ राम
मेरे साई मेरे बाबा मेरे प्राण नाथ राम
भगवान
तेरे
द्वार पे मैं आऊं मुझे शांति दो भगवान
तेरे
द्वार पे मैं आऊं मुझे शांति दो भगवान
शांति दो भगवान, मुझे शांति दो भगवान, मेरे जीवन में साथ रहो
मेरे साईं।